एक ही उपाय से बाबा मल का आग बुझ सकता है। वो कैसा है? जब पानी बारिश बरसना शुरू होता है तो ये बारिश होने से दावा नल का आग बुझ सकता है। और तुम्हारा कथा रूप जो अमृत है वो केवल बारिश पानी का ही वर्ष बारिश नहीं, अमृत का बारिश होता है। तो ये अमृत से इस भौतिक जगत का जितने सारे क्लेश हैं और इस क्लेश रूप जो दावानल है वो बुझ सकता है। तप तो जीवनम कभी भी ईहितम, तुम्हारे बारे में जो कथा है वो महात्माओं ने कहते हैं, मुनि ऋषियों ने कहते हैं। कभी का मतलब है जो भगवत चिंतन में मग्न रहते हैं, जैसे आदि कवि है ब्रह्मा, महाकवि है व्यासदेव, महा और एक महाकवि है वाल्मीकि जिन्होंने रामायण रचना किए थे। तो ये भगवान के बारे में जो भगवान के विषय का जो कथा है वो वैसे महात्माओं ने ही केवल वर्णन कर सकते हैं। कभी भी ईड़ितम और कल्मषापहम, वो सुनने से कल्मष जो है, जो दिल का जो गंदगी है वो दूर हो जाता है, साफ हो जाता है। कभी भी ईड़ितम और श्रवण मंगलम, वो सुनने से मंगल होता है। श्रवण मंगलम और श्रीमदाततम, श्री का मतलब है ऐश्वर्य वैभव और संपदा, सौभाग्य, सुंदरता, ये सब है श्री। तो श्रीमदाततम ये कथामृत सुनने से, श्रवण करने से, श्रवण मंगलम सुनने से मंगल होता है और पूर्णतया श्री प्राप्ति होता है, श्रीमदाततम। और भूरि गृणन्ति, ये भूरि दार्जना, ये भगवान का कथा जो सुनाते हैं, जो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और दूसरे को सुनाते हैं कीर्तन के द्वारा, वो है भूरिदा, मतलब सबसे महान उपकारी। ऐसे बहुत सारे उपकार होता है जब जिसके जरूरत होता है उसको देने से उपकार होता है, जिसको बीमार हुआ उसको दवाई देने से उसको उपकार होता है, जो गरीब है उसको पैसा देने से उपकार होता है, जो भूखा है उसको खाना देने से उपकार होता है। परंतु सबसे बड़ा उपकार कैसे होता है? भगवान के वाणी को सुनाने से, क्योंकि भगवान को साथ हमारा संपर्क जोड़ने से, भगवान को याद के, भगवान को पहचान कर उनके साथ संपर्क स्थापन करने से हमारा सारे कष्ट का उपशम हो जाता है, निवृत्ति हो जाता है। तो इसके कारण भगवान के बारे में सुनाना ही, भगवान के बारे में भगवान की कथा रूप अमृत प्रदान करना ही सबसे बड़ा उपकार है। तो वो जो देता है वो सबसे बड़ा उपकारी है। भूरि गृह्णन्ति, भूरिदा, भूरि का मतलब बहुत और दा मतलब दान, दाता। सबसे बड़ा दाता कौन है? जो भगवान को दान करते हैं। भगवान को दान कैसे होता है? भगवान की कथा सुनाने के द्वारा। ये सुंदर है ना, ये एक
ये बनाऊंगा। पर भगवान की कृपा से ही ये हुआ है। और मैं तो मुझे बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि ये इतना सुंदर एक सुयोग हमें मिला है। ये स्थान बहुत ही पवित्र है, यहाँ के रहने वाले आप लोग बहुत पुण्यवान हैं, धार्मिक हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ ही हम अपना केंद्र बना के आप लोगों के साथ मिलकर भगवान की वाणी का प्रचार करने का कोशिश करें। और मेरा विश्वास है कि ये होगा। स्थान बहुत ही पवित्र है, यहाँ के आदमी बहुत पुण्यवान है, भगवान के प्रति आप लोगों का स्वाभाविक आकर्षण है। ये एक बहुत सुंदर लक्षण है। पहले पहले थोड़ा सा ये होता था मेरा मन में कुछ द्विधा था कि ये यहाँ तो आम आदमी हिंदी भाषी है और मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, तो कैसे हम मेरा जो कहना है उसको मैं कहूँ। अधिक समय हमको विदेश में ही रहना पड़ता था, तो हिंदी का चर्चा करने का मौका भी बहुत कम मिलता था। और पर आप थोड़ा थोड़ा विश्वास आ रहे हैं कि शायद मैं आपके साथ अपना मनोभाव को आदान प्रदान कर सकूंगा। देखिए, शास्त्र में बताया, श्रीमद् भागवतों में बताया गया है कि भगवान का वाणी जो है, भगवान के विषय का जो वर्णन है, वो अगर उसका वर्णन में कुछ भूल भ्रांति भी रह गया तो उसमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि असल में तो भगवान का वाणी जो है ये हमारे हृदय का असली चाहना है। जैसे पेट का चाहना है खाना, वैसे दिल का चाहना है भगवान। जब तक ना भगवान के साथ हम हमारा संपर्क जोड़ते हैं, तब तक हमारा दिल भूखा रहता है। दिल का मतलब है आत्मा, क्योंकि आत्मा दिल में, हृदय में विराज करता है। आत्मा रहता है दिल में, हृदय लोग आसन में आत्मा बैठे हैं। और आत्मा का चाहना क्या है? आत्मा भगवान का साथ अपना संपर्क जोड़ना चाहता है, और जब तक वो नहीं मिलता है, भगवान के साथ संपर्क नहीं जोड़ता है, तब तक आत्मा अशांत रहता है, भूखा रहता है। पर जब भगवान के साथ संपर्क बन जाता है, तब आत्मा प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति योग करता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग सजाए। ऐसे भगवान को भक्ति करने से, भगवान को प्यार करने से भक्ति जोगत है, भक्ति के द्वारा भगवान के साथ युक्त होने से हृदय प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न का मतलब क्या होता है, उसको और कुछ चाहना नहीं रहता है। जैसे जब भूखा आदमी को खाना मिल जाता है, खाने के बाद और क्या खाना चाहता है, वैसे ही आत्मा जब भगवान के साथ अपना प्यार का संपर्क जोड़ लेता है तब वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और ये भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के विषय का जो ज्ञान है वो है असल विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञानम, इस ज्ञान प्राप्त होने से मुक्त संग से जाए तो इस भौतिक जगत का जितने सारे कठिनाई है, जितने सारे बंधन है, उससे छुटकारा मिल जाता है, मुक्त हो जाते हैं हम लोग। इसके कारण ये भगवत भक्ति इतना जरूरी है। ये भगवत भक्ति भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न तरीका होता था। सत्य युग का पंथा था ध्यान, कृते जध्यायते विष्णु। सत्य युग में भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का उपाय था, तरीका था ध्यान। द्वापर त्रेतायाम जजते मखो, और त्रेता युग में, त्रेता युग का पंथा था युग धर्म जिसे कहा जाता है। युग धर्म का मतलब है भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का जो पंथा, उसे ही युग धर्म का। धर्म का मतलब है भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। जहां पर ही धर्म है या किसी भी स्थान में किसी भी धर्म हो, उस धर्म में क्या कहता है, भगवान कौन है और भगवान के साथ संपर्क कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। देखिए ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म, भगवान के बिना क्या कोई धर्म हो सकता है, नहीं। धर्म का मतलब है भगवान को पहचानने का, भगवान को जानने का तरीका और भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का उपाय। तो हमारा सनातन धर्म में असल में धर्म तो एक ही है, और वो जो धर्म है वो है सनातन धर्म। मतलब हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए यही एक धर्म है। भगवान तो बहु एक ही है, है ना।
रेगिस्तान में वहां के आदमी इतना इतना उन्नत नहीं है, उनका मनोभाव वो लोग एडवांस नहीं था। तो उसके कारण उनका जो निर्देश दिया गया है, शिक्षा जो दिया गया है, वो मामूली शिक्षा, भगवान ही है, भगवान को मान लो और ये ऐसा काम करो और ऐसा काम नहीं करो। जो ईसा मसीह ने जो ईसाई धर्म का जो प्रकाश दिए थे वो और थोड़ा एडवांस था, और थोड़ा डेवलप था। उन्होंने बताया अपना जो परम पिता जो है भगवान को प्यार, परंतु इन दोनों धर्म में भगवान कौन है उसके बारे में कुछ बताएं। हमारा एक भक्त कह रहा था कुछ दिन पहले, वो एक एयरपोर्ट में बैठा था तो पास में एक मुसलमान बैठे थे, वो था मक्का का, और वो मक्का का जो मस्जिद जो है वहाँ का कुछ उससे युक्त था, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी बोलते थे। तो उन्होंने पूछा, आपका मैं सुना कि आपका धर्म में कुरान में बताया गया कि भगवान अल्लाह एक सोना का सिंहासन में बैठते हैं। बोला हाँ। तो बोला अगर अल्लाह सोना का सिंहासन में बैठते हैं तो अल्लाह का कुछ रूप है जरूर। तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि ईसाई धर्म मुसलमान धर्म में इस्लाम धर्म में भगवान रूप के बारे में। तो चुप हो गया। बोला देखिए, आपको यहाँ तो धर्म में भगवान के रूप के बारे में बताया नहीं गया, परंतु ये तो आप जरूर मानते होंगे ना कि भगवान जब अल्लाह जब बैठते हैं तो उसका कोई चेहरा है, रूप है ना, जिसका जो व्यक्ति अगर नहीं है तो बैठने का सवाल तो नहीं। और वो बोला देखिए मैं अगर बोलूं तो, बोला आपका अल्लाह के बारे में आपको कोई जानकारी है, अल्लाह कौन है, आपका अल्लाह का शक्ल कैसा है? तो वो कुछ नहीं बताया। तो बाद में बोला, एक भगवत गीता था उसका पास, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो पिक्चर है वो दिखाकर बताया, मैं अगर बोलूं कि ये अल्लाह है तो आप क्यों बोलेंगे? तो कुछ नहीं बोला। तो बाद में पूछा, मैं क्या ये किताब मैं आपसे ले सकती हूँ? खुद मांगे, क्योंकि उसका मन में ये भावना है कि बुद्धि को ये इसका विचार दूर कि अल्लाह अगर बैठते हैं तो अल्लाह कोई अल्लाह का रूप है, स्वरूप हो
निराकार,
निराकार तो जिसका आकार नहीं है उसका तो बैठने का सवाल
सही है।
ऐसे बहुत सुंदर ये होता है। एक बार प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे तो कुछ कैथोलिक प्रीस्ट आकर प्रभुपाद से मिला था और उनको पूछा, आप ये क्रिश्चियन लड़का लड़कियों को क्यों हिंदू बना रहे हैं? प्रभुपाद बोला, नहीं मैं क्रिश्चियन को हिंदू नहीं बना रहा हूँ या यहूदी को मुसलमान नहीं बना रहा, मैं क्रिश्चियनों को सही क्रिश्चियन बना रहा हूँ, यहूदी को सही यहूदी बना रहा हूँ, मुसलमान को सही मुसलमान बना रहा हूँ और हिंदू को सही हिंदू बना रहा हूँ। क्योंकि हर धर्म का असल उद्देश्य क्या है? भगवान को पहचानना और भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। यह हम मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, हमारा उद्देश्य तो केवल एक ही है। तो उद्देश्य जब साधन हो जाता है तो उस धर्म में मैं सही ढंग से स्थित हो जाता हूँ, ठीक हो जाता है। तो भगवान को हर धर्म में ही भगवान को ढूंढ रहा है, तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का कोशिश हो रहा है, तो यही है सही धर्म। और इसीलिए हमारा जो धर्म है उसको सनातन धर्म, सनातन का मतलब
युग,
सनातन का मतलब
सदा हमेशा,
हाँ, जो हर समय के लिए रहता है, नित्य नित्य, इसको सनातन धर्म कहा जाता है या नित्य धर्म कहा जाता है। इस भौतिक जगत का जो कुछ है वो अनित्य है, परंतु आध्यात्मिक जगत अनित्य सनातन। आत्मा नित्य है, आत्मा का जो धर्म है वो भी नित्य है। तो देखिए आत्मा तो भारतीय, यूरोपीय या अमेरिकी नहीं है, आत्मा नित्य है और आत्मा का धर्म भी एक ही है। आत्मा का धर्म तो ये सब का, देखिए अमेरिका हो, अमेरिकी हो या भारतीय हो, रशियन हो या चीनी हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, हम तो सब एक ही मनुष्य है, जीव है, आत्मा है और हमारा धर्म है और आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश। तो उसके कारण ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही भगवान का अंश है, मुसलमानों में नहीं है, या तो मुसलमान केवल भगवान का अंश है, हिंदुओं में नहीं, सब हम भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ हम सबको ही संपर्क है और वो संपर्क जोड़ना ही हमारा जीवन का असल उद्देश्य है। तो मैं जो कह रहा था, भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न धर्म होता है। जैसे सत्ययुग का जो युग धर्म था वो था ध्यान, त्रेता युग का धर्म है यज्ञ, यज्ञ में आहुति देकर भगवान को, भगवान के पास सब कुछ अर्पण कर देते थे, मतलब अपने आप को अर्पण करना, मेरा जो कुछ है मैं अर्पण करता हूँ, अंत में मैं अपने आप को आपके पास अर्पण करना। तब ये यज्ञ का अग्नि से भगवान स्वयं प्रकट होते थे। द्वापर युग का धर्म था पूजा अर्चन, मंदिर में भगवान की पूजा, और कलि युग का धर्म है कृते जध्यायते विष्णु, त्रेतायां जजते मखु, द्वापरे परिचर्यायां कलो तथा कीर्तनम्। सत्ययुग का जो धर्म था भगवान के नाम का कीर्तन, तेज अध्यायते विष्णु, भगवान का ध्यान है सत्ययुग का धर्म, तेज अध्यायते विष्णु, त्रेतायाम जजते मखो, जजते मतलब यज्ञ, और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान को परिचर्या पूजन, और कलो तद हरि कीर्तन, कलि युग का धर्म। और ये भगवान का नाम कीर्तन होने से इसका फल क्या होगा, भगवान के साथ हमारा संपर्क बढ़ता है, और भगवान के साथ संपर्क बनने से क्या होता है, दिन तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है, ये है इसका फल। आप कृपा करके ये विचार करेंगे कि देखिए ये जो हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म का, ये जो सनातन धर्म है इसका प्रभाव आज जगह जगह में फैल गया है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के आदमी इसको ग्रहण कर रहा है। क्यों ग्रहण कर रहा है, ये क्या एक फैशन है इसलिए ग्रहण करते हैं, नहीं, देखेंगे जो लोग ग्रहण करते हैं वो एकदम कितना हार्दिक भाव लेकर इसको ग्रहण करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वो लोग तो विदेश में सब तो मांस मछली खाते हैं, वो मांस मछली छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते, हर तरह का नशा छोड़ देते हैं, केवल शराब या वैसे नशा नहीं, चाय कॉफी भी नहीं पीते। हमारे संस्थान में हमारा संस्थान का कानून है, नियम है कि अगर कोई इस संस्थान के साथ युक्त होना चाहते हैं तो ये चार काम कुछ करें, सब हर प्रकार का मांसाहार, मांस मछली अंडा ब्याज दर्शन छोड़ना पड़ता है, हर तरह का नशा ताकि पान चाय कॉफी भी छोड़ना, और किसी प्रकार का जो बुरा काम है उसको छोड़ना, और जुआ खेलना तो आप सोचिए इस जमाने में विशेष रूप से विदेश में अमेरिका यूरोप में ये चार काम छोड़ना बहुत कठिन है। भारत में तो ऐसे बहुत सारे आदमी नशा नहीं करते हैं, मांस मांस मछली नहीं करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, जो सात्विक भाव जिसका है वो ये काम नहीं करते, परंतु विदेश का तो हालचाल भिन्न है, और हर व्यक्ति मांस खाते हैं, अगर मांस नहीं खाता तो उसको खाना नहीं मिलेगा उसका यहाँ जैसे हमारा स्टेपल फूड है रोटी चपाती चावल, उनका स्टेपल फूड है मांस,
उसके साथ और कुछ और बाकी जो हमारे जैसे चपाती के साथ हम सब्जी खाते हैं उन्होंने मांस के साथ सब्जी खाते हैं परंतु ये सब छोड़ देते हैं
क्यों? क्योंकि उनको ऐसे ये उनका ये सही ढंग से पता चल गया है कि ये मार्ग जो है ये सही मार्ग है और इसको ग्रहण करना ही जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे विदेशी भक्त इतने सारे नहीं है परंतु कुछ है, देखेंगे यह एक माता जी है रशिया से आई है, आप देखिए एकदम भारतीय बन गए हैं, है ना, साड़ी पहनती है, भारतीय लोग साड़ी पहनना छोड़ दिए और हाँ जो पुरुष है वो पतलून शर्ट नहीं पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि ये ही सही मार्ग है, सही रास्ता है, इसको ग्रहण करना ही जरूरी है। तो कलयुग का जो धर्म है वो है नाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन के माध्यम भगवान के साथ हमारा संपर्क बनता है, और ये संकीर्तन क्या भगवान का नाम रूप, नाम के रूप में जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये महामंत्र का जो कीर्तन, केवल कीर्तन ही नहीं, जब हम जो जोर से जब ये गाते हैं इसको संगीत के रूप में जब गाते हैं तो उसको कीर्तन कहा जाता है, और जब बहुत सारे आदमी इकट्ठा होकर एक साथ गाते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। तो कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम की कीर्तन, ये एक बहुत ही सरल पंथा है। देखिए ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है ध्यान, यज्ञ करना भी मुश्किल है, कठिन है, मंदिर में भगवान को पूजा करना भी बहुत कठिन है, परंतु ये नाम संकीर्तन, भगवान को नाम को कीर्तन करना, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप भगवान को नाम लेते रहिए, भगवान को नाम कीर्तन करते करिए, और इसका इससे फल क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा,
हमको बताना नहीं पड़ेगा। जैसे जब भूखा आदमी खाना खाता है तब के उसको कुछ बोलना पड़ता है क्या हुआ खाना खाने के बाद, वैसे ही जब भगवान को नाम हम कीर्तन करते रहेंगे तब उसका फल क्या होता है वो हमें ही पता चल जाएगा, हमें ही मालूम चल जाएगा। बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को?